बिस्मिल्लाह कीजिए।
सर,
नहीं, डूज एंड डोंट्स ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो अल्लाह ने आपको एक सिस्टम में रखने का सलीका बता दिया, तरीके बता दिए। देखिए ना, एक सिस्टम है। अब आपके घर की लिमिट्स हैं, आप अपने घर में जाहिर है किचन में वो काम नहीं कर सकते जो बाथरूम में करते हैं, बाथरूम में वो काम नहीं कर सकते जो आप ड्राइंग रूम में करते हैं, और करें सर, तो लिमिटेशंस हैं। ठीक है, ये इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही नहीं। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव से हट जाएंगे और एक जाब्ते को, एक कानून को समझेंगे कि ये अल्लाह क्यों बता रहे, तो आप उस पर अमल करेंगे, या उसे अगर मना किया तो बाज रहेंगे। अब देखे ना, गुस्सा करने से मना किया, इसमें किसका भला है, अल्लाह का भला है या सिस्टम का भला है या आपका भला है? आपका भला है। जब आप गुस्सा करते हैं आपकी एनर्जी जाया हो जाती है, तो इसमें जब आप एनर्जी जाया कर बैठते हैं, आप सिस्टम के लिए बेकार हो गए। सिस्टम को क्या तकलीफ पड़ी है कि आपको मना करे, हैं? भाई सिस्टम पे क्या असर पड़ा? भाई देखे ना, एक बंदा हिटलर बन गया, ठीक है, उसने तबाही मचा दी, क्या हुआ? जिन्होंने उसका गुस्सा बर्दाश्त किया या उसके गुस्से का शिकार हुए, वो अपनी कमजोरियों की वजह से हुए। आखिर में क्या हुआ? सिस्टम ने उसको रगेद के रख दिया। इसी तरह ये कुरान में जितने भी किस्से हैं, ये फिरौन के, नमरूद के, शद्दाद के, ये सब क्या हैं? ख्वाहिश इक्तदार से मना किए, वो अपनी मनमाने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो सिस्टम, ये बात वाजे हो गई। तो कुरान को समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो सिर्फ इस अमर की तरफ मबजूल रखें कि अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं, अल्लाह क्या समझाना चाह रहे हैं। उसको आपने एक्सप्लोर करना है, उसको आपने क्या करना है, तलाश करना है, समझने की काविश में लगे रहेंगे, बात समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी तो देखे ना, हम एक मुआशरती शऊर के साथ अल्लाह की बात को समझना चाह रहे हैं। अल्लाह की बात वही है, वही को समझने के लिए हमें वही की तरफें चाहिए। उनका तरीका अल्लाह ने बता दिया, क्या कि फैजा फरख्ता फन सब, के फारग होके पूरे इनहमाक से उसमें गड़ जाओ। यानी हमने अपनी तवज्जो सिर्फ उस पर रखनी है कि इसकी तकरार करनी है, उसको दोहराना है जहन में। मैंने कई दफा ये जुमला अर्ज किया है कि भी समझना आपने है, समझाना अल्लाह ने है, लेकिन शर्त क्या है कि आप अपनी तवज्जो का बर्तन उस नल के नीचे रखें तो सही, जिसमें अल्लाह की तरफ से एक धार आएगी पानी की या मफाहीम की। हमने सिर्फ अपने जहन को मतवज्जो रखने का हुनर सीखना है, बाकी अल्लाह ने डालना है। पांडे को आपने साफ करना है, अपने बर्तन को, यानी अपने जहन के बर्तन को मांजना किसने? हमने। मंजाई का तरीका क्या है कि आपने डूज एंड डोंट्स पे अमल किया, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनसे बाज रहे, जिनका करने का कहा है उनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह अल्लाह खैर सर, जहन साफ होता जाएगा, तवज्जो खुद ब खुद आती जाएगी। ये इसी डूज एंड डोंट्स में है कि गौर करो, फिक्र करो, तवज्जो दो, हाँ या नहीं? तो बस ये तरीका है। थैंक यू। वेलकम।
मैं एक सवाल करूं?
इरशाद,
मकतूबे गिरामी से मेरा सवाल है।
जी जी
जी, मकतूबे गिरामी में है ईमान से ठीक है, और ज़ौक जो है सर, ये हर इंसान के अंदर ज़ौक मौजूद है।
जी जी,
दरअसल वही ज़ौक लाइफ है, स्ट्रीम है।
जी जी,
तो मुझे जरा सा इसी से ही जिंदगी की बिना है
जी,
इंसान इसको इस्तेमाल करे या ना करे
जी,
इसकी अपनी मर्जी और मसलहत है।
सही,
ये ज़ौक ही इंसान के अंदर बसता है, वरना इंसान खला है।
आहा।
सर ये ज़ौक क्या थी?
आप देखें ना, उन्होंने क्या कहा, जिंदगी की बिना, क्या कहा, चश्माए हयात, क्या कहा, लाइफ स्ट्रीम, लाइफ स्ट्रीम यानी के जिंदगी का बहाव, ठीक है, इसी को चश्माए हयात कहा, हाँ या नहीं? अब ज़ौक क्या हुआ, देखें इन लफ्जों पे जरा सी तवज्जो दें तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे अंदर जो जिंदगी है यही ज़ौक है।
अच्छा।
देखिए मैं आपको मिसाल से अर्ज कर देता हूँ।
जी।
अब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, ठीक है, लस्सी का एक गिलास आया।
जी।
आपने बढ़ा के हाथ बड़े शौक से पिया, ठीक है। अब मेरे जैसा एक टी टॉडलर जो है वो कहता, नहीं मैं लस्सी नहीं पीता, चाय पीता हूँ, ये क्या है, ज़ौक। मुझे चाय का टेस्ट है, आपको लस्सी का टेस्ट है, ये क्या हुआ, जिंदगी, जिंदगी ही ऐसी हरकतें कर रही है ना, ये चॉइसेस हम कहाँ से कर रहे हैं, ज़ौक की वजह से। आप जाते हैं दुकान पे, कपड़ा खरीदते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपको बड़ा ज़ौक है, यानी कि यू हैव गॉट अ टेस्ट फॉर ये गुड ड्रेसेस, ठीक है। अब बाज़ घरों में आप जाते हैं, वहाँ आपको एक सलीका, एक नफासत नज़र आती है, तो हम कहते हैं ये बड़ा टेस्टफुल आदमी, कहते हैं या नहीं? इसी तरह बाज़ लोगों को कुतुब पढ़ने का बड़ा ज़ौक होता है, उन्हें वो किताब की शक्ल देख के बता देते हैं कि इस किताब में कोई काम की बात है या नहीं, ये क्या हुआ, ज़ौक। वो जो अल्लाह के बारे में ज़ौक रखते हैं, those who have a taste for अल्लाह, जिनको तमीज है कि अल्लाह क्या है, यानी वो मादी चीजों को गैर मादी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ज़ौकी की वजह से वो इस नतीजे पे पहुंचे ना कि ये चीजें जो है ये तो मखलूक है।
जी सर।
आप बर्तन खरीदने जाते हैं, आप एक ऐसा सेट पसंद करते हैं जो आम बंदे के ज़ौक के मुताबिक नहीं है। अब आम बंदा कहता है ये क्या आपने खरीद लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो सेट खरीदा, कोई साहिब ज़ौक आदमी कहेगा कि भाई वाह क्या चॉइस है, हैं? क्या हुआ, ये लफ्ज ज़ौक का देखे मैं कितनी जगह इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूं कि ज़ौक असल में क्या है, यही तो सारे काम करवा रहा है आपसे। अगर आप को ज़ौक ना हो तो आप ये बातें सुनेंगी, ऐसी बातें सोचेंगी
नहीं सर।
एक चीज, एक बंदे को जौक ही नहीं है तो जौक क्या हुआ, अंग्रेजी का एक लफ्ज है टेस्ट। अब एक टेस्ट मुंह में आता है और एक आपकी फिक्र में होता है, ये जो फिक्री टेस्ट है इसका नाम है जौक। ये मतलब है, कहते हैं ना ही इज ए वेरी टेस्टफुल पर्सन, इसका ये मतलब थोड़े ही आप मुंह में डाल के चखें मतलब है कि उसके जहन में अच्छी चीजों के इंतखाब की सलाहियत है
जी,
हाँ या नहीं?
हाँ सर ऐसे ही होता है। और हर एक का अलग हो जाता है।
हाँ ठीक हो गया, ये बात वाज़े हो गई।
अच्छा,
इसी को ईमान कहा, और करें, इसी को ईमान कहा, यानी बीमार बिलीव करना। बिलीविंग क्या है भाई, आप एक कपड़ा खरीद रहे हैं, आपको बिलीव है, आपका बिलीफ है कि ये बहुत अच्छा है, तो ये किस वजह से हुआ? जौक की वजह से। भाई आप एक टी शर्ट खरीद रहे हैं और आप कहते हैं ये बड़ा नफीस है, अब जो भी देखता है कहता है भाई क्या टेस्टफुल बंदा है, इसने कैसा खूबसूरत सेट खरीदा, भाई माशाल्लाह आपका जी, कहते हैं ना इसको शायरी का बड़ा शौक है, क्या मतलब? अच्छे शेर की पहचान है इसको, ये उसको एंजॉय करता है। अब मेरे जैसे को आप शेर सुनाते हो, कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, आप कहते हैं यार क्या बदशौक आदमी हैं? क्लियर हो गई बात? वक्त
जी सर, अच्छा यही जौक चलता फिरता है ना, जौक। अच्छा एक चीज की सर ये है कि जौक में ना वजन होता है, जौक के लिए कोई फैसला मायने नहीं रखता, ना जौक जमीन और आसमान की हुदूद का पाबंद है, ना उसे वक्त पाबंद बना सकता है। यही जौक चलता फिरता है, ये बात जरूर है कि इंसान इससे उस वक्त तक मुतारुफ नहीं होता जब तक कि इससे तारुफ हासिल ना करे,
यानी कि इंसान को उससे तारुफ हासिल करने के लिए जोर लगाना है। ठीक है, टेस्ट आपके अंदर मौजूद है, ये टेस्ट
का मतलब अपने आप को ग्रो करना,
अपने आप को डेवलप करना, सब जौक है,
ये भी जौक है।
देखे ना बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको मैंने कितनी मिसालें अर्ज की, ये सब किस वजह से है? जिंदगी की वजह से। जिंदगी क्या है? ये इसी टेस्ट का एक दूसरा नाम है। यही जिंदगी आपके अंदर क्या कहा, चश्माए हयात, क्या कहा, लाइफ स्ट्रीम, क्या कहा, इसी से जिंदगी की बिना है, यानी लाइफ की बिना, बिना मैंने बुनियाद, ये है जिंदगी की बुनियाद, यही अल्फाज है ना मक्तूबे गरामी में जौक की डेफिनेशन। तो साफ तो बता रहे हैं कि भाई ये जो जिंदगी है इसकी बुनियाद आपके मतलब जौक पे रखी गई है, इंसान के अंदर जौक है, यही जौक इंसान को देखे ना, अगर आपको रूहानियत का शौक पैदा हुआ तो इसी जौक की वजह से हुआ। आप अपनी लिमिटेड थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो जौक ही की वजह से निकल रहे हैं ना, आप उसमें महदूद रहना चाहते हैं, ये एक और तरह का जौक है। भाई एक बंदा लहसुन खाना शौक से खाता है, हैं? वो कहता है कि भाई इससे मेरा खून पतला रहेगा, दूसरा बंदा कहता है यार खाता हूं तो मुंह से बू आती, मैं नहीं खाता। अब उसका जौक जो है वो एक चीज से उसकी बदबू की वजह से उसे नहीं पसंद कर रहा, दूसरा बंदा उसके
वो पसंद कर रहा है,
पसंद कर रहा है, या वो अपनी जरूरत बनाए बैठा है, उसको बू की परवाही नहीं है, ये भी तो जौक ही हुआ ना उसका। तो इंसान देखे ना, उन्होंने तो खलासा ही बता दिया कि इंसान सिर्फ जौक है, इसी जौक का नाम है तकवा, वो जो अल्लाह के बारे में अपने अंदर जौक रखते हैं, यानी समझने में एहतियात करते हैं। गौर करें, उन्होंने कितनी गहरी बात बताई। हम लोग आपस में जब बात करते हैं, तकवे का मतलब एहतियात करना, एहतियात करना, एहतियात करना, परहेज करना, डरना, हमने ये तर्जमे किए हुए, उन्होंने उसकी असल जड़ पकड़ा दी हमारे हाथ में कि तकवे की बुनियाद है जौक पे, जौक जो है यही बंदे को मजबूर करता है कि वो एक्सप्लोर करे। अगर आपको अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें ढूंढेंगे या नहीं, पैसे खर्च करेंगे या नहीं? भाई मांग तांग के भी आपको पढ़नी पड़े तो आप पढ़ेंगे या नहीं? और अगर शौक ही नहीं है जी तो आप गुड़ियां पटोलों से ही खेलते रहेंगे। ठीक हो गया
जी सर,
बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर, मेरा क्वेश्चन आपके बुक मैसेज अंडरलाइन कुरान में पेज नंबर 11 से है। तो एक सर उसमें स्टेटमेंट है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मिसकंसेप्शंस दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस फेसेस इज व्हेन एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स अ थिंग ही कंसीडर्स इट राइट एंड समवन एल्स अंडरस्टैंड्स इट डिफरेंटली एंड थिंक्स दैट दैट इज राइट। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड वैरायटी ऑफ व्यूज। तो सर इससे रिलेटेड था, जैसे हम जब कुरान प्रेमी की डिस्कशन करते हैं, जैसे एक क्लास में सारे साथ होते हैं, तो एवरीवन शेयर्स देयर अंडरस्टैंडिंग एंड मेनी ऑफ द टाइम्स वी हैव कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम वर्स। तो व्हाट शुड वी डू या व्हाट एटीट्यूड शुड वी हैव टू
कुरान
दैट वी ट्राई अंडरस्टैंड?
जो मैं बात समझा हूं, मुझे एक बात का जवाब आप दे। हकीकत दो हो सकती है, मतलब है कि इस वक्त 3 बजे हैं, इस बात पे कोई डिसएग्रीमेंट करेंगे हम?
नहीं।
क्यों? क्योंकि दिस इज ए फैक्ट। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कब आएगा? व्हेन ईदर ऑफ द टू पर्सन और मैनी ऑफ द पर्संस, एनी वन ऑफ द पर्सन is not knowing the reality. तो कुरान ने क्या तरीका बताया कि हकायक को जानो। जब आप हकीकत को समझ लेते हैं तो डिफरेंस कहां रहा?
नहीं रहा,
रह नहीं सकता। टेक्निकल बात है ना भाई, आप समझ रहे हैं कि आप दुरुस्त हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूं मैं दुरुस्त हूं, ये तो मेरी और आपकी अपनी अपनी समझ है। असल बात क्या है? असल बात यह है कि हम दोनों ही सच को नहीं जानते, लिहाजा मैं अपनी फहम को दुरुस्त बता रहा हूं, आप अपनी फहम को दुरुस्त बता रहे हैं। लेकिन अगर हम कुरान की तालीमात के मुताबिक हकीकत शनास हो जाएं, अल्लाह अल हक है, हकीकत है, हां या नहीं? तो जब आप किसी चीज को रियलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे?
रियलाइज
कर लेंगे, तो रियल किसे कहते हैं? हकीकत को। अगर रियलाइजेशन नहीं है तो डिफरेंस तो रहेगा
जी सर।
अब उसके लिए, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपने सवाल पूछा, ठीक है
जी सर,
मैंने एक जवाब अर्ज किया। मेरा जवाब, अगर हकीकत मबनी बर हकीकत है तो आपका जहन उसे तस्लीम करेगा
जी।
अगर मैं टमक टोनिया मार रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपका जहन मुतमइन नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कि हम रियलिटी तक नहीं पहुंचे। तो जब तक आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आए, समझ जाइए कि या ए गलत है या बी गलत है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में से एक बंदा दुरुस्त होगा, सही होगा, हक पे होगा। अगर दोनों ही हक पे होंगे तो दोनों ही ठीक हो गए, फिर काहे का डिफरेंस रहा? कैसा सिंपल है ना कि भाई, मोटी सी बात याद रखो, हकीकत में तजाद नहीं होता, हकीकत दो नहीं हो सकती। भाई इस वक्त दिन के 3 बजे हैं, ये रात के 3 तो नहीं बज सकते। अगर मैं फर्ज करें किसी ऐसे कमरे में बंद हूं कि मुझे टाइम का एहसास नहीं है, तो कसूर मेरी फहम का है ना
जी।
आपके पास बड़ा अच्छा तरीका है, खिड़की के पर्दे खोलें और कहें भाई देख लो बाहर सूरज शाम पड़ रही है दिन के 3 बजे।
जी सर, समझ आ गई।
ठीक हो गया
जी सर, थैंक यू सर।
अब इसमें नुक्ते की एक बात और सुन लें, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना
जी सर,
इसको कभी डिबेट ना बनाएं।
जी।
अगर एक बंदे को आपसे इख्तलाफ है तो इनवाइट हिम टू थिंक, ठीक है
जी।
कभी ये फोर्स ना करें कि नहीं, देखे ना अल्लाह रब्बे करीम से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अल्लाह ने भी एक बात कह दी है, आपका दिल करता है मानो, नहीं करता तो मत मानो। अल्लाह ने आपको खुली छूट दी है, मैं कौन होता हूँ जबरदस्ती करने वाला। जी देखे ना, जब अल्लाह ने हमें अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ तो मैं कौन होता हूँ किसी को उसकी मर्जी से रोकने वाला। एक बंदा कहता है यार तुम गलत कह रहे हो, मैं कहता हूँ ठीक है सॉरी भाई माफी चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं खुद को सच्चा साबित करूँ।
जी
वालेकुम अस्सलाम।
सर आपका लास्ट पॉइंट बहुत खूबसूरत है और ये हम सबके लिए बहुत इसमें,
मैंने इसीलिए आखिर में अर्ज किया क्योंकि उन्होंने इसी एंगल से पूछा था।
जी सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और बहुत आला, अल्लाह करे कि हम ऐसे ही।
जी देखे ना, जब हम अल्लाह की तर्ज फिक्र अपनाना चाहते हैं तो ये बात हमें क्यों भूल जाती है कि अल्लाह क्यों नहीं जबरदस्ती कर रहा। भाई अल्लाह मियां अगर चाहें तो सारे ही अल्लाह के मानने वाले ना हो जाते। भाई इस वक्त 7 अरब की आबादी है, ठीक है, इसमें से तकरीबन 1 अरब लोग मुसलमान हैं। अल्लाह मियां को क्या फर्क पड़ता है, 6 अरब तो नॉन मुस्लिम है ना, तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ा, तो मुझे क्यों पढ़ रहे। तो मैं ऐसे ही थक रहा हूँ हैं, जब अल्लाह को फर्क नहीं पड़ रहा भाई ऐश करने तो अगले को, वो जो मर्जी सोचे। आप दावत दे सकते हैं कि भाई ये हकीकत ये, जब आप हकीकत की बात करेंगे क्या होगा, सारे दुश्मन हो जाएंगे आपके। जी बहुत ज्यादा, इसलिए सुन लीजिए बड़ी सिंपल सी मैंने कैलकुलेशन आपको दी कि एक के मुकाबले में 6 बंदे जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं इस वक्त दुनिया में, स्टैटिस्टिक्स ये कह रहे हैं, ठीक है या नहीं। अच्छा ये जो 1 अरब बंदा है ये आगे कोई 72-73 या पता नहीं 80-90 फिरकों में बटे हुए हैं। अब आप अगर एक बात को सच समझ रहे हैं तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है, ठीक है। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि दूसरों पे थोपे, आपको क्या जरूरत पड़ी है उनके शऊर से टकराएं। अब रह गई बात के भी अगर कोई पूछे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने जो बातें अर्ज करता हूँ वो आपके दिल को लगती हैं, आप सुन लेते हैं, अगर समझ नहीं आती तो आप उस पर मजीद सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं पूछना चाहेंगे तो आप कॉल ही नहीं अटेंड करेंगे, अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो क्या होगा। अब बात आ गई कि भाई ला इकरा फिद्दीन, ये अल्लाह ने कानून बता दिया कुरान में, कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते। इकरा यानी कि अगले को कराहत के साथ मजबूर नहीं कर सकते कि वो पसंद करे ना करे, लेकिन आपकी बात माने। क्यों माने? उसे अल्लाह ने नहीं छेड़ा तो मैं क्यों छेड़ू। दूसरी आयत इससे भी ज्यादा सख्त है, लस तो बे मुसाय तेरे, क्या कहा तुम्हें डंडा बरदार नहीं बनाया। हाँ या नहीं? हमने कहा ये तो हजूर अलैहिस्सलाम को कहा। नहीं भाई, हर बंदे को कहा है कि तुम कोई डंडा बरदार तो हो नहीं। भाई हम हजूर के उम्मती हैं, जो कुछ उनको कहा क्या वो मेरे लिए नहीं है? क्यों जी? अब ये तो नहीं हम कह सकते कि जी ये बात हजूर को कही है, मेरा इसे कोई ताल्लुक नहीं। हमने तो ये किया हुआ है ना, लेकिन असल कहानी क्या है कि जो बात हजूर अलैहिस्सलाम को फरमाई गई है वो मेरे लिए भी तो लागू होती है ना। अगर मुझे अपने नबी के नक्शे कदम पे चलना है तो जिन चीजों से अल्लाह ने उनको मना किया और वो बाज रहे, तो मुझे भी बाज रहना चाहिए।
इस्तेमाल करके समझाना चाहता है, यानी अल्लाह तो उन्हीं के करीब होता है जो अपनी सिफत इम्तियाज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सर
सिफत इम्तियाज यानी के तमीज करना, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले जौक की बात हो रही थी
जी सर,
ये जौक ही
सवाल मेरे जहन में था।
जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो जौक है ना, यही असल में क्या कहा, हबलुल वरीद। यानी हबलुल वरीद कहकर क्या कहा कि जिंदगी रगे जां, यानी वो क्या कहा, लाइफ स्ट्रीम, जिंदगी की बिना कहा ना। असल में ये सिफत इम्तियाज ही पे बात की मैंने कि ये तमीज जो है ये इंसान की रगे जां है। जब देखे ना आप एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज में से अच्छी चीज चुनते हैं तमीज की वजह से ना। आपको पता है ये पानी मैला है, ये पानी साफ है, तमीज की वजह से। आप बाजार में कपड़ा जब पसंद कर रहे होते हैं तो आप अपनी सिफत इम्तियाज की वजह से कहते हैं ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी दो अच्छी चीजों में से फिर आप बेहतर जो चुनते हैं वो सिफत इम्तियाज की वजह से। अब जब आप दो चार दस अच्छी चीजों में से बेहतरीन चुनेंगे तो क्या होगा, आप हर बार बेहतर से बेहतर से बेहतर चुनते चुनते बेहतरीन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सिफत इम्तियाज को आप जितना तीखा करते जाएंगे, जितना इसको सैकल करेंगे, जितना इसकी धार तेज करेंगे, आप क्या होगा, अल्लाह के करीब होते जाएंगे आप, क्योंकि बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर एडवांस डेवलपमेंट हो रही है ना।
एग्जैक्टली सर। तो सर ये जौक में आ जाएगा फिर
सारा कुछ, जौक ही का तो खेल है। मैंने क्या अर्थ किया कि उन्होंने एक ऐसा जामे लफ्ज बोला जो बहुत सारी बातों को समेटे हुए अपने अंदर। इसी जौक की वजह से आप सिफत इम्तियाज से आरास्ता है। इसी सिफत इम्तियाज को मतलब हजूर मुर्शिद करीम ने ये बात फरमाई कि ये सिफत इम्तियाज जो है, ये नजरिया रंगो नूर में अब्बा ने लिखा कि सिफत इम्तियाज जो है इसी को कुरान ने हबलुल वरीद कहा। بات واضح ہو گئی؟
سر ایک سوال اور،
ارشاد
جی سر، بہت پیارے سر، سر اصل میں وہ یہ بات، ہاں سر یہ ایک سوال تھا اور میرے پاس سر اس کو میں نے تھوڑا سا کرنا تھا سر، یہ جنت کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو سر یہ ہمیشہ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں شاید کو کہ جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ابدا، سر مجھے پلیز اس کو ایکسپلین کریں گے آپ کی؟
ضرور، کیوں نہیں، جنت کسے کہتے ہیں؟
جی سر
جنت کسے کہتے ہیں؟
سر کیف
خوشی کو،
کیفیات کو، خوشی
خوشی، ٹھیک ہے نا
سر، خوشی کی کیفیات،
اللہ رب کریم کہہ رہا ہے جنت ایک ایسی کیفیت ہے، دیکھیں نا جب آدم کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، پھر اس کو علم الاسماء عطا کیا، اس کو کہا کہ اس کو ڈسپلے کرو، اس کے بعد اسے کہا کہ اپنے زوج کے ہمراہ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو عیش کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی صرف بندے کو کھانے پینے اور خوش رکھنے میں کیا، اس میں نیابت کہاں سے آ گئی؟ اصل چیز بھول گئے، دیکھیں نا ایک بندے کو آپ ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بطور ڈپٹی کمشنر کام کرنا ہے، یہ 12 کنال کا بڑا سا گھر جو ہے ڈپٹی کمشنر ہاؤس، یہ آپ کے رہنے کے لیے، اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں لان بھی ہے، اس میں ٹینس کورٹ بھی ہے، اس میں بیڈمنٹن کورٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ڈپٹی، اس میں اتنے ملازم ہیں، تو اتنے بیٹس مین ہیں، تو اتنے چوکی دار ہیں، اردلی ہیں، ڈرائیور ہیں، خانسامے ہیں، برتن دھونے والیاں ہیں، تو کپڑے دھونے والیاں اور استری کرنے والیاں، یہ ساری چیزیں گنوا دی، یہ کیا ہوئے؟ کیا یہ اس کا اصل کام ہے؟ نہیں، اصل کام تو اس کا آفس جا کے ڈپٹی کمشنر ہی کرنا ہے۔ اب ہم نے اس طرح سے بات کو سنا کہ آدم نائب ہے اور اللہ نے اسے کہا جنت میں رہو، یہ بات کبھی ہمارے ذہن میں نہیں گزری کہ بھی اگر وہ خوشی کی کیفیت میں رہے گا تو اچھے کام کرے گا، اس کو اتنے پرکس، اتنا لیوکریٹو ماحول کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنے فرائض پورے کرے۔ اب ہمیں ساروں کو فرائض کے چکر سے نکال دیا کہ جی جنت، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، او بھائی جنت میں جاؤ گے جب اپوائنٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے گی آپ نے آیت کی طرف کہ جنات تجری، اس میں جاری رہیں گے، تجری اجرا ہوگا، کس چیز کا
جاری رہیں گے؟
وہ جو خوشی کی کیفیت ہے اس میں وسائل کی فراوانی ہے، بس خوشی کے لیے جو بھی وسائل درکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کہ من تحتِ الانہار، وہی جیسے وہ تھا نا کہ تحتِ اقدامِ امہاتکم، حدیث میں نے عرض کی تھی نا کہ پیروں کے نیچے نہیں ہیں، ان اقدامات کے تحت جنت ملے گی۔ اب اقدامات کے تحت والا جملہ یاد ہے آپ کو؟
اقدامات کے تحت جنت، ہاں جی یاد ہے، پیروں کے نیچے نہیں، آپ نے،
ہاں، اسی طرح یہ تحت الانہار، یعنی کہ وہ جو فراوانی کے تحت، فراوانی کے تحت جو بھی وسائل چاہیے خوشی کے وہ دستیاب رہیں گے، خالدین فیہا اس میں وہ رہیں گے، خلد کا مطلب خالد کے رہنے والے، ابادن کا مطلب ہو گیا کہ وہ پرماننٹلی وہیں رہیں گے، وہ کیفیت ختم نہیں ہوگی، وہ پرماننسی آ گئی اس میں، ठीक हो गया। अब अगर आप इस मादी जिंदगी में खुशी से आशना नहीं हुए, आपने शैतान को डिफीट नहीं किया, तो आप जन्नत के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। आप दुनिया में रहते हुए नियाबत इलाहिया को नहीं समझे, आप अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो आप नायब कैसे हो गए? अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को इस्तेमाल करना क्या है? भाई यही तो नियाबत है,
खबर होना।
भाई यही तो नियाबत हुई ना। देखें, आपको अल्लाह ने जो सलाहियतें अता की हैं, आप उनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, जितना एहसन इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने इस बात पे खुश होंगे, खफा होंगे?
ऑफिस के खुश होंगे।
हाँ,
मैंने इसलिए इस्तेमाल करें।
अब देखे ना, ये मतलब क्लियर हो गया कि शुक्र करना क्या है? अल्लाह की अता को अच्छी तरह इस्तेमाल करना शुक्र है। जब आप दुनिया में अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके कामयाब होंगे, दुश्वारियों को आप आजमाइश समझ के, एक टेस्ट समझ के उसमें क्वालिफाई करते चले जाएंगे, क्या होगा? आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे, आपके अंदर एक खुशी की कैफियत होगी कि मैंने अच्छा किया। ठीक है ना? वो जो आपके इनर में ये कैफियत तारी हो गई कि मैंने अच्छा किया, ये अच्छा करने के बाद जो आपके अंदर खुशी मौजज़न होगी, जारी हो जाएगी तजरी। ठीक हो गया
जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, सो मच,
वेलकम।
मेरे सवाल हो गए।
जी जी,
सवाल पूछ रही हूँ इसमें, ये जब भी आपने बताया तो नहार, वो सर पानी के तहत, पानी सर इसमें क्या है, नहार क्या है?
नहर, देखें, नहर का मतलब पानी नहीं है, नहर का मतलब है जारी, चीज का बहाव, तजरी जारी होना, और फिर नहर का मतलब है उसका बहाव। यानी इस बहाव के तहत, तहते अलनहार, यानी इस बहाव के तहत आपको जो कुछ भी चाहिए होगा वो वसाइल फरावानी से अता होंगे। अब देखे ना, हमने इसका तर्जमा कर दिया, वहां दूध और शहद की नहरें होंगी, हमने लफ्ज नहर को बहाव के माने में नहीं लिया। मसलन आप गौर करें, आपके घर आटा मुसलसल सप्लाई हो रहा है, चावल मुसलसल आ रहे हैं, मसाले सारे मुसलसल आ रहे हैं, हाँ या नहीं? हर घर में किचन की ग्रोसरीज जो हैं वो लगातार आ रही हैं, हाँ या नहीं? तो ये एक बहाव है ना। अब ये वसाइल का एक बहाव है, मैं कहूँ जी मेरे घर तो दूध की नहरें बह रही हैं, क्या मैं कह रहा हूँ सचमुच कोई नहर थोड़ी बह रही है? ये जुमला मैंने सबसे पहले अपने सिलसिले में फजल रहमान साहब, फजल रहमान कुरैशी साहब, जानते हैं नाम आपने सुना होगा, काशिफ नईम के वालिद साहब से।
हैं
जी
अच्छा हाँ सर सही नहीं सर ठीक है भाई ये मुअज्जमुल कुरान वाले समझ गई
नहीं नहीं नहीं
मैं समझ गई सिलसिले के काशिफ साहब के वाले
जी
कहते हैं।
जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी मिसेस ने एक अजीब जुमला कहा, कहने लगी कि मतलब वो उन्हें याद करके कहने लगी कि उनके होते हुए हमारे घर में दूध और शहद की नहरें बह रही थी, यानी कैसा ट्रिब्यूट दिया। उस दिन मुझे समझ आई, मैंने कहा कि दायरे में नहर तो कोई नहीं थी मतलब ये था लगातार सप्लाई। अब जाहिर है कि वो फजल रहमान कुरैशी साहब घर में शहद रखते थे, खत्म ही नहीं होने देते थे, ठीक है ना वो खत्म होता था मजीद डिब्बा खरीद के ले आते थे, ठीक है। तो अब कहने में देखे ना, अब ये अल्फाज की मानवियत से ऊपर क्या अदबियत आ गई। अदबियत में हमने कहा कि घर में जी नहरें बह रही हैं, भाई नहरें घर में थोड़ी बह सकती हैं, मतलब ये कि वसाइल की लगातार सप्लाई को नहर कहेंगे, ठीक हो क्या। तो इस तरह देखें तो सभी के घरों में माशाल्लाह सब नहरें बह रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी
खूबसूरत है सर, एक सवाल है
इरशाद
कि ये जो हमारी मौजूदा जिंदगी है तो जब हम यहाँ से आलम एराफ में चले जाएंगे तो ये जिंदगी फिर हमारी मफरूजा हो गई, मादी वजूद खत्म हो गया, मादी जिंदगी मफरूजा हो गई, मादी हवास खत्म
जी हो जी तो। जी जी
सर ऐसे तो आलम एराफ में तो फिर इंसान
मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ
उसका ताल्लुक ज़हन से होगा तो सर
जी जी बात पूरी करें
जी सर। तो सर एक वक्त तो ऐसा भी है रूह की आवाज़ कायम हो जाएंगे तो क्या फिर वो जो ज़हन हालत होगी जिस ज़हन से जिस माइंड सेट से वो एराफ की जिंदगी गुजार रहा होगा वो भी फिर उस वक्त मफरूजा हो जाएगी।
नहीं इस बात को जरा समझ लें जी, मैं अर्ज करने लगा हूँ, मैं समझ गया हूँ। देखिए आपने यहाँ जो जहन बनाया इसके जहन की काम की रफ्तार है एक, ख्वाब के आलम में ये जहन 70 गुना की रफ्तार से काम करता है, जहन तो यही काम करेगा। आप हवास से बेदारी में जिस रफ्तार से काम लेते हैं ख्वाब में उसे 70 गुना से रफ्तार से काम लेते हैं, हवास तो वही है। आलम राफ में ये 70,000 गुना से बढ़ जाएंगे, लैलतुल कदर में ये 70,000 गुना हो गए तो मौत के बाद ये 3,65,000 गुना हो गए। जहन वही रहा, अब रफ्तारों का फर्क पड़ गया, ठीक है। अब एक वक्त आएगा जब आप 3,65,000 को ऐसे डील करेंगे जैसे आप यहाँ एक को डील कर रहे हैं, फिर आप अगला गियर लगाएंगे या अल्लाह आपके निजाम के तहत अगला गियर लगेगा, क्या होगा, अब हम पे रूह के हवास तारी हो जाएंगे। रूह के हवास की रफ्तार है 36,50,000 गुना, जहन तो वही रहा अब देखिए मैं एक वक्त में साइकिल चलाता था, फिर मैं बाइक पे आ गया, फिर मैंने गाड़ी खरीद ली, ठीक हो गया, ये 3 दर्जे हो गए। तीनों हालतों में मैं रहा तो वही मकसूद, मेरा वही जहन रहा। लेकिन क्या कि जब मैं पैदल चलता था तो मैं देखता था काश मैं जरा तेज चल सकूं, तो मैंने बाइक ले ली। जब मैं बाइक को थक गया तो मैंने कहा यार ऑटो होनी चाहिए, तो वो अल्लाह ने करम किया, मैंने ऑटो ले ली। जहन तो वही था, लेकिन अब मैं टाइम की बचत के लिए हवास की रफ्तार से काम ले रहा था। इसी तरह आप जब ऊपर जाएंगे, चूंकि हवास की रफ्तार बढ़ेगी, अगर आप दुनिया में परेशानी वाला जहन बनाएंगे तो ऊपर जाके उसकी बड़ी हुई रफ्तारों की वजह से वो परेशानी उतने गुना ज्यादा हो जाएगी। अगर आप दुनिया में खुशी इख्तियार कर लेंगे तो वो जहन खुशी का बना होगा, वो आप वहाँ खुशी को उतनी ज्यादा शिद्दत से एंजॉय करेंगे। तो जब आप उससे ऊपर के जोन में, यानी कयामत के जोन में जाने के बाद आगे के जोन में जाएंगे, तो जब आप हशर नशर में पहुंचेंगे जहन तो वही होगा। लेकिन वर्किंग की रफ्तारें बढ़ जाएंगी। अब आप बजाय बाइक के चलने के या पैदल चलने के, अब आप बायर उड़ रहे होंगे। बंदा तो वही रहेगा, चाहे वो साइकिल पे था, बाइक पे था, गाड़ी में था या एयरप्लेन में था। ठीक हो गया, ये एक मादी सी मिसाल है, उम्मीद है कि बात समझाने के लिए अर्ज कर दिए। इसका चले शुक्रिया, बहुत नवाजिश,
बहुत शुक्रिया सर। ये मेरा एक ही सवाल था,
बड़ा जानदार था। जी फरमाइए, क्या
जी सर, मैं एक सवाल कर लूं सर प्लीज।
जी जी
सर, सवाल ये है मेरा कि कुरान हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुआ और कुरान में अल्लाह ने ये बात फरमाई कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ।
जी जी,
मेरे तक पहुँची और उसके बाद तमाम औलिया करा दर्जे तक पहुँचे। सर बेसिकली सवाल ये है कि हजूर सल्लम को ये कैसे हुआ और वो उस दर्जे तक कैसे पहुँचे, क्योंकि उसे पहले तो कोई भी उस दर्जे तक नहीं पहुँचा था।
एक जुमले में जवाब अर्ज करूं,
40 साल के बाद उनको नबुवत मिली।
मैं एक जुमले में जवाब इसका ये कि उन्होंने गौर व फिक्र को अपनाया। अल्लाह ने या कुदरत ने उनका जहन ऐसा बना दिया कि वो गौर व फिक्र में इन्वॉल्व रहे। कीवर्ड क्या है? गौर व फिक्र। अब उसकी रिचुअलाइज फॉर्म में आ गया मुराकबा। मुराकबा क्या है? ये भी एक बैठ के आराम से किसी चीज पे गौर करना है। अब जितना ज्यादा कोई बंदा गौर करता है, अल्लाह रब्बे करीम उसको नवाजते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो वही आई, वो अल्लाह ने देखा कि जब ये बंदा खोज में लगा हुआ है तो उसको नवाजा गया। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। ताजुद्दीन बाबा औलिया, ताजुद्दीन बाबा औलिया नागपुरी, जब ये फौज में थे वहां से ये जाया करते थे वहां किसी मजार पे, ठीक है, वहां जाके बैठे रहते थे।
जी
ऐसे ही है सर। पर पता आपको वो क्या सोचते थे? ये हक क्या है, क्या? हकीकत क्या है?
सही हो गया सर।
एक जुमला या एक लफ्ज पे वो सालों उन्होंने सोचा।
सही।
कुरान ने ये भी कहा लैसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके जिसकी वो कोशिश करे। अब ताजुद्दीन बाबा औलिया ने जब एक बात ये सोचनी शुरू की कि हकीकत क्या है, तो अल्लाह ने कर्म किया, अल्लाह ने उनको हकीकत आशना कर दिया।
सही हो गया सर, सही हो गया।
क्लियर होगी ना बात, यानी कि उन्होंने अपने नबी की सुन्नत पे अमल किया। अब हम और आप इस बात से आशना हो रहे हैं, कुरान ने ये 756 आयात तो सरी हुक्म, तजवीज, तरगीब, तबलीग के भी गौर करो, फिक्र करो, गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, ताकुन करो, इदराक हासिल करो, कितने अल्फाज इस्तेमाल करके मतवजो किया कि भी गौर व फिक्र को अपनाओ, और हमने कितने एहतमाम से अपनी औलादों को मना कर दिया कि खबरदार सोचना नहीं, पागल हो जाओगे।
सही बिल्कुल ऐसा ही है सर।
किसी को कहो कि गौर व फिक्र करो, वो कहता है जी मैं गुमराह हो जाऊंगा।
जी सर।
यानी अल्लाह रब्बे करीम एक बात अपनी कलाम में अपने महबूब तरीन बंदे को बता रहे हैं।
जी सर।
ये नहीं कि जी आपने चूंकि वो 25 साल से लेके 40 साल तक 15 साल गौर व फिक्र कर लिया तो अब आप छुट्टी करें ना। उन्हें भी यही कहा गया कि फायजा फराख्ता फन सब, खुद को फारग करो और इसमें गड़े रहो।
हाँ
या नहीं?
जी सर बिल्कुल ऐसा।
अब ये फक्को रकबा, अपनी गर्दन को आजाद करो, यानी ध्यान से अपने सोचों की, अपने माइंड की निगरानी करो। अब उनके जरिए उनकी उम्मत को बताया गया, उम्मत ने तर्जमे का फायदा लेते हुए बात का रुख बदल दिया।
जी सर।
वो तहते इकदाम को पैरों के नीचे कर दिया।
जी।
और नहरों को नीचे से बहा दिया।
जी सर। जी सही हो गया सर।
तो ये सारा खेल किस चीज का हुआ? कम फहमी का।
ओके सर, ये गौर फिक्र तो करना है सर।
बस आप जितना ज्यादा गौर व फिक्र को वक्त देंगे अल्लाह उतना ज्यादा नवाजेगा, ये अल्लाह का वादा है।
जी सर, जी सर। सर ये एक सवाल और कर लूं सर, ये जो कनात है, हुजूर कलंदर बाबा औलिया की कोट आई थी उसमें लफ्ज ये कनात का इस्तेमाल हुआ था सर, ये कनात को वादे कैसे हैं ये प्लीज?
जी कनात कहते किसे?
जी यही तो पूछना चाह रही थी सर।
आप बताएं ना, आप क्या समझे कि किसे कहते हैं?
सर मतलब जो भी मुयस्सर है उस पे आप शुक्र करें बस।
आहा, अब ये कनात का मतलब बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने। देखें कनात कहते हैं जो दस्तयाब है आप उस पे राजी हो।
जी।
क्या?
जी सर।
जो दस्तयाब है उस पे राजी हो, जो जरूरत है उसके लिए कोशिश करें।
जी, जी सर।
कनात का ये मतलब नहीं है कि आप ठुस होके बैठे रहें।
जी सही हो गया सर।
जो चीज दस्तयाब है उसको पूरा इस्तेमाल करें राजी बर रजा रह के।
जी सर।
ठीक है ना। उर्दू में हम ये कनात का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कनातें लगी हुई थी क्या?
जी,
मतलब
जी सर,
मतलब है कि एक आड़ क्रिएट की जाती है।
जी सर। जी सर,
उसको हम कनात लगाना कहते हैं ना,
जी जी सर,
ताकि नजर ना पड़े, ठीक है
जी।
आप अपनी जरूरतों के और लोगों की नजरों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर लेते हैं कि जी आप अपने घर में दाल खाई है, बाहर जाके अपना मूछों को ताव दे रहे हैं कि जैसे मैं गोश्त खा के आए। यानी आप अपनी दस्तयाब वसाइल को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और जो दस्तयाब नहीं है उसके लिए काविश करते हैं।
काविश करते हैं, सही हो गया सर, सही हो गया। थैंक यू सो मच सर,
मेरा
हो गया।
चले ठीक है, काफी है
सर, बहुत आला सर, हर सवाल का जवाब बहुत आला है सर, आज की क्लास को बहुत ही आला
होगा। बस अल्लाह करम करे, ये सब आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश रखे, ये सब आपकी
नहीं सर, सर सब लोगों के लिए बहुत आला सब जवाब आए हैं, आपका शुक्रिया सर, इतनी खूबसूरती से बयान हुए हैं कि सवाल का जवाब, और तनाज का तो बहुत ही आला
है सर। बस ये अल्लाह का इनाम है, इसे अपना अल्लाह का मैं करम समझता हूँ। ये देखें हम पे बड़ा खसूसी करम है, शुक्र अल्लाह रब करीम का, शुक्र है परवरदिकार का। अल्लाह खुश रखे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।